वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि प्रतिदिन की तरह आज भी आप सब प्रभु के वचन में से सीखने के लिए तैयार हैं, ताकि हम सब फिर से उसके वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। हाँ तो मित्रों, आपको याद होगा कि हमने पिछले अध्ययन में 10 कुंवारियों और तोड़ों का दृष्टांत देखा था, और आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्र का न्याय अर्थात जातियों पर न्याय से आरंभ करते हैं। तो मित्रों, इस अध्याय में हमारे प्रभु परमेश्वर के लोगों को उस सत्यता से सचेत कर रहे हैं कि हम अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार रखें, और यह बात अगले कुछ पदों में निश्चित रूप से सत्य होने जा रहा है। मित्रों, क्लेश या सताव के समय में सभी जातियों को सुसमाचार सुनने और स्वीकार करने का अवसर मिलेगा। परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार सभी जातियों के बीच में किया जाएगा, जैसा कि हमें बताया गया है, परंतु कुछ लोग परमेश्वर के सेवकों या संदेश वाहकों को अस्वीकार करेंगे, जो मसीही हैं उनको अस्वीकार करेंगे, और ऐसा करने के द्वारा वे मसीह का इनकार करेंगे। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय और उसके 31 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। मित्रों, जैतून के उपदेश का सभी ध्रुवन यीशु मसीह की ओर या इस संसार के सिंहासन पर बैठाने की ओर बढ़ रहा है, और वास्तव में यही मत्ती रचित सुसमाचार का और संपूर्ण परमेश्वर के वचन का संदेश है। अब हम आगे देखेंगे कि जातियों का न्याय होगा। हो सकता है कि आप पूछेंगे, इसका अर्थ क्या न्याय व्यक्तिगत रूप से नहीं होगा? जी हाँ, आप इसे व्यक्तिगत ही समझ लें, जो मिलकर एक जाति को संगठित करते हैं या बनाते हैं, परंतु जातियां परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 32 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। यहां पर जातियां यूनानी भाषा का एथनोस शब्द से आया है, हम इसे अन्य जातियों का दल कह सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 33 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। मित्रों, मैं इस उदाहरण को नहीं जानता जहां परमेश्वर ने कब प्रत्येक को बकरी कहा है, क्योंकि सभी मानव जाति को भेड़ कहा गया है, और ये दो प्रकार के हैं, खोई हुई भेड़े और उधार पाई हुई भेड़े। ये भेड़े हैं न कि बकरियां। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय के 6 पद में लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मित्रों, यहां पर ध्यान दें कि सिर्फ भेड़ नहीं है, परंतु खोई हुई भेड़ और बचाई हुई भेड़ है, और मैं विश्वास करता हूं कि बकरियां अन्य जातियों के दलों को प्रस्तुत करती है। अब यहां पर ध्यान दें कि उनको पहचानने की परीक्षा है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय और उसके 34 पद से लेकर के 40 पदों में इस प्रकार से पढ़ते हैं, लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी दिया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। मित्रों, महाक्लेश के समय 144,000 यहूदी जो मुहरबंद किए जाएंगे, वे संपूर्ण संसार में जाकर राज के सुसमाचार के संदेश का प्रचार करेंगे, और वो यह है कि उनके पापों के लिए मसीह के बलिदान को स्वीकार करना और उसके शीघ्र आने के लिए तैयार होना। परंतु कुछ जातियां मसीह को अस्वीकार करेंगे और मसीही विरोधी परमेश्वर के संदेश वाहकों को कत्ल कर देंगे, अर्थात मरवा डालेंगे, और जो कोई उन्हें एक कप ठंडा पानी देगा वह अपने जीवन को खतरे में डालकर ऐसा करेगा। हमारे दिनों में एक ग्लास या एक कप ठंडा पानी देना बहुत थोड़ा महत्व रखता है, लेकिन महान क्लेश के दिनों में इसका महत्व आश्चर्यजनक होगा। इसका मतलब यीशु मसीह के लिए खड़ा होना होगा और जातियों का न्याय यीशु मसीह को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के आधार पर होगा। वह कहता है, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी भी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया, क्योंकि संदेशवाहक उसे प्रस्तुत कर रहे थे। मित्रों, वही एक मार्ग होगा कि वे संदेश में विश्वास का प्रमाण देंगे कि स्वर्ग का राज्य निकट है, और उन्हें पश्चाताप करके और मसीह की ओर फिरना है ताकि वे बचाए जाएं। परंतु उन लोगों के लिए जो अस्वीकार करते हैं, सिर्फ न्याय ही है। हम मत्तयी सुसमाचार उसके 25 अध्याय उसके 45 और 46 पद में पढ़ते हैं, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया, और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मित्रों, संपूर्ण जाति हजार वर्ष के राज्य में प्रवेश करेगी, और इनमें से कुछ लोग व्यक्तिगत रीति से मसीह का इनकार करेंगे, परंतु यीशु के दूसरे आगमन के समय यह निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी जाति हजार वर्ष के राज्य में प्रवेश करेगी, और जातियों का न्याय दूसरे आगमन पर ही होगा। यह न्याय अन्य न्यायों से बिल्कुल अलग या भिन्न होगा। मित्रों, यहाँ पर 25 अध्याय समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 26 से बनाए रखेंगे। तो हम इस अध्याय में इन खास विषयों पर ध्यान देंगे कि यीशु के क्रूस पर चढ़ने से तुरंत पहले उसके जीवन की घटना, उसे पकड़ने का षड्यंत्र या साजिश, बैतनिय्याह में मरियम के द्वारा बहुमूल्य इत्र का उंडेला जाना, यहूदा इस्करियोती द्वारा बेचा जाना, प्रथम प्रभुभोज का अनुष्ठान करना, पत्रस के इनकार करने के बारे में भविष्यवाणी करना, गतसमनी बगीचे में पीड़ा उठाना, और यहूदा के द्वारा धोखा दिया जाना, मुख्य याजकों के द्वारा बंधुआ बनाया जाना, कैफा और यहूदियों के महासभा के सामने परीक्षा लिया जाना, और पत्रस के द्वारा इनकार किया जाना आदि विषयों पर हम विचार करेंगे। मित्रों, मत्ती रचित सुसमाचार में यह अध्याय सबसे बड़ा है, और 35 के समाप्ति में एक अंतराल है। यूहन्ना उसका 15 अध्याय से 17 अध्याय में जो घटनाएं लिखी गई है वह यहां पर भी रखी जा सकती है, और एक दूसरा स्वाभाविक अंतराल पद 57 की शुरुआत में हो सकता है। यहां इस अध्याय का विभाजन धार्मिक शासकों के सामने यीशु की परीक्षा को एक अलग श्रेणी में रखेगा, और संभवतः जिन्होंने पवित्र शास्त्र का विभाजन किया है उन्होंने बहुत सी घटनाओं को एक ही अध्याय में शामिल किया ताकि पढ़ने वालों को इन होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में कुछ बताएं। मित्रों, इस अध्याय में प्रत्येक घटना और विवरण क्रूस की ओर ही केंद्रित करते हैं। यहाँ पर एक पाठधन या अग्रगमन है जिससे पाठक को ऐसा लग सकता है कि यीशु परिस्थितियों के बाउंडर में फंस गए जिसके ऊपर उनका कोई भी नियंत्रण नहीं है। जो भी हो, एक ध्यानपूर्ण परीक्षण और विचार इस बात को प्रकट करेगा कि वह परिस्थितियों का भी स्वामी है। जैसे जैसे वे क्रूस के निकट पहुंच रहे थे उतने ही वे अधिक राजा के जैसे लग रहे थे जितना पहले वे कभी नहीं लगे। मित्रों, इस अध्याय में और अध्याय 27 में जो भी बातें लिखी गई है उनका अध्ययन उसके दृढ़ निश्चय के प्रकाशन में ही करना चाहिए। जो निर्णय उसने कैसरिया फिलिपी में 6 महीने पहले किया था कि उसे यरूशलेम में मरने के लिए जाना है, हम मत्तियुस सुसमाचार 16 अध्याय उसके 21 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों, मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जिलाया जाऊं। वो परमेश्वर की समय सारणी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं। प्रिय मित्रों, वह एक असहाय व्यक्ति नहीं थे जो धार्मिक षड्यंत्र और रोमी साम्राज्य की शक्ति के बीच में फंसे हो। जैसे हम इन बातों पर जो इस अध्याय में लिखी गई है ध्यान देते हैं, हमारे विचारों में एक आदर व्याप्त होना चाहिए क्योंकि ये बातें पूर्णतः हमारे उद्धार से संबंधित हैं। आगे हम देखते हैं कि यीशु को मारने की योजना, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा। जब यीशु ये सब बातें कहना समाप्त कर चुका, ये कौन सी बातें थी? ये जैतून के उपदेश थे। उसने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जो अंत के समय के विषय में थे, और अब उसके पास उनके लिए कहने को कुछ और बातें हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 2 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। पद 2 में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि वह मरने जा रहे हैं। इस लेख के अनुसार वह उन्हें 6वीं बार अपने मृत्यु के बारे में कह रहे हैं। कैसरिया फिलिपी में 6 महीने पहले उसने उन्हें अपने मृत्यु की घोषणा की थी, और अब वह अपनी मृत्यु के समय को निर्धारित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि वह फसह के समय मरेंगे, परंतु धार्मिक अगुओं की कुछ और ही योजना है। पद 5 पर ध्यान दें, परंतु वे कहते हैं पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में दंगा हो जाए। मित्रों, जिन लोगों ने उसे मृत्यु के घाट उतरवाया, उन्होंने कहा कि वे उसे पर्व के समय क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे। उसने कहा था कि वह पर्व के समय में ही मरेगा। वो कब मरे? वो फसह के पर्व के दौरान मरे? मित्रों, आप देखें कि उसके प्राणदंड का समय उसके शत्रुओं ने निर्धारित नहीं किया था, परंतु यीशु ने स्वयं किया। वह अधिकार में है। मत्ती रचित सुसमाचार में वह एक राजा है, और जब वो किसी और समय से अधिक असहाय और कमजोर लगता है तो फिर भी वही अधिकारी है। उसके शत्रुओं की कड़वी नफरत ने उन्हें उसकी हत्या करने की योजना बनाने की ओर अग्रसर किया, और वे सब काम अपने तरीके से करना चाहते थे, परंतु उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे जैसे यीशु क्रूस की मृत्यु के निकट पहुंचते हैं, वे और भी अधिक राजा के जैसे होते जाते हैं। मित्रों, अब हम उस घटना से पार होकर एक आश्चर्यजनक ज्योति में आते हैं। हम आगे देखते हैं कि बैतनिय्याह की मरियम के द्वारा यीशु पर इत्र उंडेला जाना। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा हुआ है, जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन पर बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। मित्रों, बैतनिय्याह प्रेम का स्थान था जबकि यरूशलेम घृणा का स्थान था। मृत्यु के पहले का कुछ समय या घंटे उसने बैतनिय्याह में बिताए, और यह घटना शमौन कोढ़ी के घर में घटी। अब प्रश्न है कि लोग उसे शमौन कोढ़ी क्यों पुकारते थे? क्या उसे कोढ़ था? जी हाँ, एक समय था जब उसे वो बीमारी थी, अर्थात कोढ़ की बीमारी, परंतु यीशु ने निस्संदेह उसे चंगा कर दिया था। अब वह इस योग्य है कि वह यीशु मसीह और अन्य लोगों के साथ संगति में बैठ सकता है, और इस समय उसके घर में रात्रि भोज की संगति चल रही है। मित्रों, यह एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है। प्रभु के शत्रु आज उसे नहीं जानते हैं। वे उस प्रभु को नहीं जानते हैं जिसने चंगा किया, प्रेम किया, जो रोया और न्याय किया। वास्तव में उसके कुछ वर्तमान समय के शत्रुओं ने कुछ समय पहले एक महाविद्यालय में एक नाटक किया, जिसमें यीशु मसीह और उसके शिष्यों को पापी मनुष्यों के रूप में दिखाया गया। एक दुख की बात है कि हमारी व्यवस्था विद्यालयों में बाइबल पढ़ना और प्रभु की प्रार्थना करने में प्रतिबंध लगाती है, परंतु वे हमारे प्रभु के गंदे और बुरे चित्रण की अनुमति देते हैं, और वे पूर्णता से ईर्ष्या निंदा करते हैं। यह सच है कि जो लोग ऐसा करते हैं वे प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं और वे अज्ञानी हैं। वास्तव में वे आत्मिक रूप से कोढ़ी हैं। यदि उन्हें सच्चाई बताई जाती तो उन्हें अपने आप को अशुद्ध अशुद्ध कहना पड़ता। मित्रों, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं और उसके द्वारा आप शुद्ध किए गए हैं तो आप बैठकर उसके साथ संगति कर सकते हैं। यही दृश्य यहाँ पर है। जब वे भोजन कर रहे थे तब एक स्त्री वहां आई जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 3 पद में पढ़ सकते हैं। वह अपने साथ संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आई और उसने प्रभु के सिर और पैर पर उंडेल दिया। यूहन्ना हमें अपने लेख में बताते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने इस पर शोक व्यक्त किया और सभी शिष्यों ने इसमें अपनी सहमति दिखाई, अर्थात सहमत हुए। हम मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया। मित्रों, मुझे आश्चर्य होता है कि वे वास्तव में गरीबों का कितना ध्यान रखते थे। ये लोग मुझे समाज में कुछ लोगों के बारे में याद दिलाते हैं जो हमेशा गरीबों की देखभाल करने के बारे में बातें करते हैं, लेकिन वे स्वयं उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हमारे देश में बहुत थोड़े लोग हैं और अरब और खरबपति हैं, और वे हमेशा गरीबों की देखभाल और उनके लिए गरीबी हटाओ आंदोलन का कार्यक्रम और गरीब राशि की मांग करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में खोजबीन किया है कि इस प्रकार के लोगों ने व्यक्तिगत रीति से गरीबों के लिए क्या किया है? मैं इस प्रकार के दिखावे पर ध्यान नहीं देता। सच्चाई तो यह है कि आपकी चिंता, ईमानदारी और ध्यान हमेशा आपके कार्यों से ही प्रमाणित होता है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं या क्या आप वास्तव में लोगों की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं? हम मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, यह तो अच्छे दाम पर बिककर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह बिल्कुल सही है, ऐसा किया जा सकता था। अनुमान से उसकी कीमत गांव के एक मजदूर के साल भर के वेतन के बराबर थी। आगे हम पढ़ते हैं मत्ती 26 उसके 10 पद में, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। मित्रों, जहां तक मसीहों से संबंध है, वे ऐसा कुछ ना दें और न ही कुछ करें जिससे हमारे प्रभु यीशु मसीह को महिमा नहीं मिलती है। मैं व्यक्तिगत रीति से समाज के उन अच्छे कहे जाने वाले कार्यों में भाग लेने से मना करता हूँ, जब तक कि उनसे हमारे प्रभु यीशु को महिमा नहीं मिलती है और जब तक कि वे काम उसके नाम से नहीं किए जाते हैं। और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि उन्होंने कितना थोड़ा निष्पादित किया, वास्तव में वो कितना देते हैं जिससे लोगों को आशीष मिले। मित्रों, कुछ बातें सुनकर मैं बीमार या असहाय सा महसूस करता हूँ जब कुछ बड़े राजनीतिज्ञों के बीच में गरीबी रेखा के कार्यक्रम के अंतर्गत भ्रष्टाचार पाई जाती है। पर जो भी हो, जब प्रभु यीशु के नाम में प्यार से सहयोग दिया जाता है तो वह स्वयं कहते हैं कि यह अच्छा कार्य है। हम मत्ती रचित सुसमाचार के 26 अध्याय और उसके 11 पद में पढ़ते हैं, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। हम में से जो लोग यह कहते हैं कि मैं मसीह पर विश्वास करता हूं और उसे आदर और महिमा देना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वे आज के दिनों में उसके नाम से अधिक काम करें। मत्ती 26 उसके 12 और 13 पद में आगे लिखा है, उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। मित्रों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए शमौन कोढ़ी का घर जो बैतनिया में था एक ज्योति और संगति का स्थान था। इसके विपरीत यरूशलेम एक घृणा का स्थान था। अंतिम सप्ताह के दिनों में उसने एक रात भी यरूशलेम नगर में नहीं बिताई, परंतु वह बैतनिया को गए और उन लोगों के साथ में रहे जो उससे प्रेम करते थे। मित्रों, जो उससे चाहते हैं और उससे प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ वह हमारे दिनों में भी संगति करते हैं। मेरे मित्र, यदि आप चाहते हैं तो आप भी उसे पा सकते हैं। मित्रों, एक टूटे हुए इत्र के पात्र की कहानी ने अपने सुगंध से संसार को सुगंधित कर दिया। हमारे प्रभु ने कहा, सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। और आज इसी समय हम इसे बता रहे हैं। मैं लोगों को प्रेरिताई अनुक्रम में होने के बारे में बातचीत करते सुनता हूं, परंतु मैं मरियम के अनुक्रम में होना पसंद करूंगा। मित्रों, केवल अकेली मरियम ही थी जो मसीह के अनुयायियों में से उसके मृत्यु को समझ पाई थी और उसके मृत्यु में प्रवेश कर पाई थी, जबकि शिष्य अर्थात प्रेरित इसे पूर्ण रीति से समझ नहीं पाए, अर्थात समझने में चूक गए। यद्यपि वह उस बात के किनारे में खड़ी थी, फिर भी वह समझ गई और उसे यह बताने के लिए उसने उस पर इत्र उंडेल दिया। तो क्या उसने अपना इत्र बर्बाद कर दिया? मैं सुसमाचार के लेख में पढ़ता हूँ कि सप्ताह के पहले दिन सुबह अन्य महिलाएं कब्र पर उसकी देह में इत्र मलने के लिए आई कि उसे दफनाया जाए। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए एक प्रश्न है, क्या उन्होंने अपने इत्र यीशु की देह में मले? जी नहीं, वह कब्र में नहीं थे पर जीवित हो उठे थे। केवल मरियम ही एक सौभाग्यशाली स्त्री थी जिसने उस पर इत्र उंडेला। मेरे प्रिय मित्रों, मुझे और आपको अपने इत्र के पात्र को प्रभु यीशु मसीह के नाम में तोड़ने की आवश्यकता है। संसार उसे नहीं जानता है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि जो कुछ हम करते हैं वह उसे महिमा दे, हम सबको नहीं परंतु उससे महिमा मिले। अब हम एक सुंदर प्रकाश की दृश्य से एक अंधेरे की दृश्य की ओर फिरते हैं। यीशु को बेचने के लिए यहूदा इस्करियोती का षड्यंत्र। मत्तियुस सुसमाचार 26 अध्याय उसके 14 से 16 पद में हम पढ़ते हैं, तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। मित्रों, यहूदा इस्करियोती का यह काम अंधेरे का और कायरता का है और मरियम के कार्य बिल्कुल विपरीत हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से आत्मिक थे। दांते ने यहूदा इस्करियोती और ब्रूटस पशु को नरक में सबसे निचला स्थान दिया है और तब से लेकर आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि वह गलत है। इन लोगों ने वह काम किया जो बहुत घटिया और बेबुनियादी था, जिसे शायद ही कोई मनुष्य करता। उन्होंने उसे धोखा दिया जिसके प्रति उन्हें वफादार अर्थात ईमानदार होना चाहिए था। मित्रों, आप देखें कि वह उसी समय से उसे पकड़वाने के लिए अवसर ढूंढने लगा और जब यीशु अकेला होगा तभी उसे पकड़ा जाना था। इसका मतलब है कि जब वह भीड़ से अलग हो तब, और यहूदा इस्करियोती उस समय का इंतजार करता रहा। हम आगे देखते हैं फसह का पर्व और अंतिम भोज। मत्तियुस सुसमाचार 26 अध्याय उसके 17 पद से लेकर के 19 पद में, अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर के फुलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। अब यहाँ पर यीशु अपने शिष्यों के साथ ऊपरी कोठी में जाएंगे और वहां पर यह घोषणा करेंगे कि उनमें से एक उससे पकड़वाएगा। तब हम आगे पढ़ते हैं मत्ती 26 अध्याय उसके 20 और 22 पद में लिखा है, जब सांझ हुई तो वह बारहों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूं? उनमें से प्रत्येक व्यक्ति जो वहां पर थे या जानते थे कि मसीह को पकड़वाने की बात उसके हृदय में है। क्या आपने अपने हृदय और जीवन में यह खोज लिया है? मेरे मित्रों, मैं और आप भी उन्हीं की तरह एक निचले स्तर पर हैं। आप कह सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन क्या आप इस बात के लिए निश्चित हैं? यदि वह अपना हाथ मुझ पर नहीं रखते हैं तो मैं अगले 5 मिनट में ही उसे धोखा दे सकता हूं, और आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। इसलिए वह हमें अपनी निकटता में बनाए रखना चाहते हैं। मित्रों, यह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम उसके निकटता में रहें, ताकि हमें उसको धोखा देना ना पड़े। तो आइए हम इस अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले निर्णय लें कि हम उसकी निकटता में बने रहेंगे। और बैतनिया की मरियम के इत्र की तरह सुगंध पहुंचाएंगे और प्रभु आप सबको ऐसा कार्य करने में अवश्य मदद करेंगे। प्रभु आप सबको इस अध्ययन के द्वारा से आशीष दे।
कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नाज करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। होंगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना।